जी हाँ, ऑडियो चेक हो चुका है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सौरभ और हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं अलग अलग विषय पे, और आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है लाइफ बियॉन्ड 2020। मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं सौरभ सेनगुप्ता दिल्ली से, जो दिल्ली में रहते हैं नोएडा ज़िला में, और ही इज़ लीडिंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द डेड रिवर प्रोजेक्ट, जो रिवर और वाटर पे काम कर रही हैं और उनके अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे लाइफ बियॉन्ड 2020। दोस्तों, हम जिस तरीके से लाइफ जीते हुए आ रहे हैं और अभी का जो फ़िलहाल सिचुएशन है, जिस तरीके से पूरा दुनिया जो है लॉकडाउन में है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, हमारे लाइफ में क्या हो रहे थे और अभी हमें कैसा लाइफ जीना चाहिए और आने वाले समय में हमारा लाइफ क्या हो सकता है, इन सारे चीज़ों पे आज हम थोड़ा सा विस्तार में डिटेल में बात करने वाले हैं सौरभ के साथ। सो सौरभ, कैन यू हियर माय वॉइस?
या हाय, यस सौरभ, आई कैन हियर योर वॉइस।
ओके, सो आप अगर आपके बारे में थोड़ा सा जो लिसनर्स हैं उनको ज़रा एक काइंड ऑफ फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दें तो सबको पता चल जाएगा कि हम आज किसके साथ बात कर रहे हैं।
लिसनर्स हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है, सौरभ सेन गुप्ता, और मैं नोएडा में रहता हूँ। और होप कि आप लोग सभी सेफ हेल्दी हैं इस लॉकडाउन में। मेरा काम जो है वो प्राइमरीली एजुकेशन, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे है। मैं ये संस्था जो है डेड रिवर प्रोजेक्ट फाउंडेशन का फाउंडर हूँ, और हमारे सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी यही कोशिश करते हैं कि वी कीप टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, वी कीप टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी सेव व्हाटएवर इज लेफ्ट, एंड हाउएवर वी थिंक दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन इट। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मैं बहुत बच्चों के साथ काम करता हूँ, एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पर वी आर ट्राइंग टू align them with the fundamental understanding of nature and how do we take life seriously and constructively and how do we engage in building a better world.
Okay, और ये कौन से एरिया में आप काम करते हैं, अगर वो भी बता दे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से एरिया में ये काम हो रहा है।
ये पूरे इंडिया में ही अगर आप देखें तो तरह तरह के वर्कशॉप्स अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, ऑफ कोर्स लखनऊ, तो उड़ीसा, तो ये इन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे।
ओके, और तो हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सौरभ, पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारा लाइफ था ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पहले, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। और आज मैंने जिस तरीके से इस चीज़ को प्लान किया है वो ये है कि हम अपने पूरे डिस्कशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कैटेगरी ये है कि सब हमारे लॉकडाउन या इस सिचुएशन से पहले हमारा लाइफ कैसा था और अभी हम लोग किस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है वो 2020 के बाद तो लाइफ बियॉन्ड 2020 क्या हो सकता है। तो इन तीन कैटेगरी पे हम बात करते हैं।
जी,
तो शुरुआत करते हैं लाइफ पहले कैसा था। तो मुझे जितना याद आ रहा है कि हमारा जो लाइफ था इस लॉकडाउन से पहले वो नेचुरली अभी के समय से तो काफ़ी अलग था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे थे जो शायद हम अनकॉन्शियसली या जानते हुए भी कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे थे जो शायद हमारे लिए भी सही नहीं था। तो और शायद नेचर या जो भी है, वाटर या जो भी हमारे साथ रहते हैं उनके लिए सही नहीं था। तो उस विषय में क्या क्या हम क्या आगे इसको लेके जा सकते हैं?
देखिए, कभी भी हम आगे जाएंगे तो हमें पीछे का सोच के ही चलना चाहिए कि हमने पहले क्या किया था सही गलत, या अभी क्या कर रहे हैं सही गलत, और हम आगे क्या करेंगे सही गलत।
राइट
तो दो पहलू हैं उन दोनों पहलू को अगर हम एनालाइज करें अभी, तो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं प्री कोरोना, तो प्री कोरोना जो सिचुएशन था वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि वी हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारे लिए ही है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉट एवर वी डू, वॉट एवर हाउ एवर वी लिव, इट्स आवर लाइफ एंड नो बडी कैन रियली कंट्रोल वॉट वी थिंक, वॉट वी डू एंड वॉट वी एक्ट. सो कहीं ना कहीं वो एक केयरलेसनेस आने से हमने कई सारे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड एंड इजी अवेलेबल समझा, जो अगर हम आज के डेट में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्टार्क डिस्टिंक्शन दिख रहा है कि हम क्या थे और क्या हैं. आज वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, पहले भी थी, लेकिन मुसीबत ये है कि इंसान एज एन एंटिटी वो लॉक्ड है. चाहे वो नेचर को ले लीजिए, नेचर भी पहले ऐसे ही था, नेचर ने तो कभी अपने आप को लॉक नहीं किया था, ना ही अभी कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अगर डीप डाउन विद इन अगर हम झांके, तो आई थिंक इट्स स्टार्क, एक तरह से क्या बताऊं मैं, कॉन्शियसनेस के साथ ये खिलवाड़ किया है हम लोगों ने. हम जो जी रहे थे, कहीं ना कहीं हमने हमने अपने कॉन्शियसनेस को सुना ही नहीं. हर इंसान के अंदर में एक आत्मा छिपी होती है जो हमेशा बात करती है और सही चीजों को समझाती है, पर कहीं ना कहीं हम सब उस चीज को ओवरराइड करके जो हो रहा है हम उसको फॉलो करते गए. हुआ ये कि उसको फॉलो करते करते हम ये भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है. तो ये सारी चीजें जस्ट बिकेम वन. तो जब ये सारी चीजें वन हो गई, तो फिर देर इज नो डिस्टिंक्शन ना, कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है. तो जब सब कुछ कमर्शियल हो गया, हमारे थॉट्स कमर्शियल हो गए, कि हमें फायदा और नुकसान ही समझ में आने लगा, और नुकसान कम और फायदा ज्यादा समझ में आने लगा, तो हम वी लैंडेड अप वेयर वी आर. तो कहीं ना कहीं इस बीमारी का जड़ भी तो इंसान ही है ना. मुझे पूरा रिसर्च के बारे में नहीं पता, सॉरी, बट जहां तक न्यूज इंफॉर्मेशन लीक आउट होके आ रही है पब्लिक डोमेन में, तो यही पता चल रहा है कि दिस वाज बीन मैन्युफैक्चर्ड. सो वो ग्रीड है ना, वो कुछ ना कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिजीज, सो दैट वर्ल्ड बिकम्स पैरालाइज्ड, या कम्युनिटी बिकम पैरालाइज्ड, या थॉट प्रोसेस बिकम्स नरल वॉइड. तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉन्शियसनेस की धज्जियां उड़ाई हमने, जिसका कारण ये है कि हम इंसान ही अब बंद हैं और बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, और बाहर निकलेंगे तो मौत है, क्योंकि हम ही ने उसको क्रिएट किया है.
तो जैसे मेरे को जो अभी रिफ्लेक्ट मैं कर सकता हूँ कि जैसे हम लोग पहले सपोज़ जो खाते थे या जो पहनते थे, जिस तरीके से हम लोग लाइफ को लीड कर रहे थे, अभी इस लॉकडाउन के मोड पे हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि शायद उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम काफ़ी हद तक गलत करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पानी का अगर मैं लूँ, क्योंकि आपका विषय भी पानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पानी का सही उपयोग करना, जैसे कि जो घर पे फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें से जितना पानी वो हमें फ़िल्टर करके देता है, लगता है उस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वो वेस्ट भी कर डालता है। उसके बाद जो घर के अलग अलग कामों के लिए हम पानी यूज़ करते हैं और उसको जैसे हम उसको एक्सपोज कर देते हैं, वो पानी एक्चुअली गटर में से होते हुए समुंदर पे या कहीं तो ऐसे जगह पे जा रहा है जिसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है हमारा जो धरती है या जो इसका इकोसिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे काम, शायद आपको और पता होगा, मेरे से ज़्यादा आपको और पता होगा, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको शायद हम उस टाइम पे उतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। तो और हाँ
तो सौरभ, मैं ये उसमें ऑन करना चाहूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना, पानी की वेस्टेज या पानी की महत्वता को ना समझ के उसको धड़ल्ले से यूज करना, तो ऑफ कोर्स ये सारी जो आदतें हैं हमने पाली हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट थी हमारे लिए. हमें ये आसानी से मिल रही थी और हमें ये लग रहा था कि ये जो एक्सेसिबल है, चाहे वो बॉटल्ड वाटर हो या पानी का जो फिल्टर है, जो नलों में पानी आ रहा है, तो वी टुक इट एज इट्स अवेलेबल रिसोर्स, हमें ये लगा. पर टेक्निकली वो नहीं है, जिसके वजह से जो क्राइसिस का जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। बाय द वे, पिछले
हुँ.
अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने पहले भी इंटरेक्शन की थी पानी की समस्या को लेके,
हुँ.
तो उसको अगर हम दोहराएं तो हम वही कहना चाहेंगे कि पानी की समस्या शुरू हुई है और हम उसके दौर से चल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न कि अगर हम अभी भी नहीं समझें विद अस एज ह्यूमन बीइंग स्टक इन वन प्लेस और स्टिल वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो द डूम्स डे विल बी नेक्स्ट आवर, ऐसा है।
राइट और मुझे याद है लास्ट हम लोग जब डिस्कस किए थे तो हमने क्लियरली ये आपसे जाना था कि अगला पैंडेमिक अगर हम किसी चीज़ को कंसीडर करें तो वो है वाटर क्राइसिस।
जी, बिल्कुल।
राइट तो आपके हिसाब से और ऐसे कौन से चीज़ें या हरकतें हैं हमारे लाइफ में जो हम बिफोर लॉकडाउन करते थे जो सही नहीं था हमारे लिए?
देखो, मेरे हिसाब से जो लाइफस्टाइल में जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और कर रहे थे, वो है ये जो ट्रांसपोर्टेशन का, अगर हम देखें एक घर में चार गाड़ियां, ये मानना है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही गाड़ी यूज करें? क्या ये पॉसिबल है कि अगर घर में चार मेंबर हैं और चारों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, उसमें से अगर कोई दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वंस इन अ वाइल इस्तेमाल कर ले, क्या वंस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक गाड़ी को हम घर रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें? मतलब वी हैव टू फाइंड अ वे, बिकॉज ये जो एक्सेस बैगेज है धरती पे, दोज आर गोइंग टू किल अस। आज हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन खुलेगा। डू वी रियली वॉन्ट टू गो बैक टू द सेम, यू नो, सेम काइंड ऑफ मेस, या वी कम आउट विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ? ठीक है, हमने जो किया, डन एंड डस्टेड, लेट्स ट्राई टू सेव गार्ड आर वॉट एवर इज लेफ्ट, एंड फ्रॉम हियर ऑन वी बिल्ड अ बेटर एंड अ सेंसिबल एंड कॉन्शियस अर्थ, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है। जहां तक सवाल रहा कपड़े पहनने का, मतलब मैं आपको बताऊं, आप भी इसको शायद समझ रहे होंगे कि अब जब ऑफिस नहीं है, बाहर जाना उतना नहीं है, तो हम बहुत बेसिक कपड़ों में ही जी रहे हैं, कोई फैंसी कपड़े नहीं पहन रहे, राइट? तो जो हमारे पास, अगर अगर हम अगले एक साल के लिए अगर हम ये प्रण करें, अगर इफ वी रियली थिंक कि इफ वी डोंट बाई क्लोथ्स फॉर 1 ईयर, या जो क्लोथ्स हमने पहले ही खरीद रखे हैं, वी यूटिलाइज दोज, जब वो एक स्टेज के बाद खराब होने लगे, उस कंडीशन में कपड़े धो के कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू दी पुअरर पीपल? तो कंपैशन, यूटिलाइजेशन, एडवांसमेंट, मॉडर्निटी, डेवलपमेंट, एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड। कोई इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए अब। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, मे बी आई मे बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाई सो मेनी पीपल हु आर आर लिसनर्स, कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है जी, आप एक साल तक कपड़े नहीं पहनोगे, नए कपड़े नए खरीदोगे? नहीं, तो अभी भी तो नहीं खरीद रहे हैं ना, चल रहा है ना। हाँ, ये जरूरी है कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, पर अगर हमारे पास हमारे वार्डरोब्स में अगर आप झांक के देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो अभी भी पहनने लायक हैं, शायद हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर कपड़ा ज्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे या हम खरीदेंगे नहीं, तो शायद हम कुछ तो सेव करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो भी हम ठीक कर सकते हैं, प्लस घर में खेती करना, आई थिंक दैट शुड बिकम अ न्यू नॉर्मल, जहाँ पर होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग लोगों को समझना चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग एडवांस में सीख गए हैं कि घर में वेस्ट को कैसे हम सेग्रीगेट करके उसको मैन्योर बनाए। मैं अपने घरों में पुदीना उगा रहा हूँ, टमाटर उगा रहा हूँ, अब मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मॉम सिखा के गई हैं कि ये करेंगे तो घर का खेती होगा टाइप्स। तो वो मुझे, जब मैं उस वक्त सीख रहा था, तो मुझे फॉर ग्रांटेड लिया था मैंने कि क्या ही सीख रहा हूँ मैं। अब इस दौरान आई एम रियली लुकिंग इन टू इट कि अच्छा ठीक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द पुदीना प्लांट्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द टमाटर्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ कड़ी पत्ता के पेड़। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू यू नो इम्बाइब। ये नया दौर होगा जहाँ पर हम प्रो इन्वायरमेंट होंगे एंड प्रो डेवलपमेंट होंगे। हमने हमें ये नहीं लगता है कि डेवलपमेंट शुड स्टॉप, हमें ये लगता है डेवलपमेंट शुड कंटिन्यू। पैरेलली गो विथ टेकिंग केयर ऑफ द इकोसिस्टम।
राइट
और ये हम सबको बहुत सेंसिबली सोचना है। वी आर नॉट हियर टू फाइट विद द वर्ल्ड, वी आर हियर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। एंड बेटर वर्ल्ड मीन्स डेवलपमेंट, बेटर वर्ल्ड मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस, बेटर वर्ल्ड मीन्स प्रो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव एंड सस्टेनेंस एंड थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। क्योंकि हमें नहीं पता आज हम इस दौर में हैं, पूरे कंप्लीटली शट हैं, क्या पता आगे आए ये दोबारा। अब जब ये एक बार आ गया तो और कुछ और भी तो आ सकता है ना। अभी चलो नहीं आया, 100 साल बाद, तो 100 साल तक हम कैसे इसको सस्टेन करेंगे अगर हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी द नेक्स्ट यू नो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग अमंगस्ट सो मेनी पीपल। मैं हर किसी को तो इसमें शामिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो सौरभ, हर किसी का एक थॉट प्रोसेस में अलाइन हो जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आउट ऑफ ऑल द जनता दैट इज लिसनिंग टू अस, हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ सेंस इन देयर थॉट्स, विल रियली अलाइन विद व्हाट वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग एट द मोमेंट।
राइट 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 तो इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों चीज़ों के साथ जो भी चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन सारे चीज़ों पे हमें कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और वो कितना सस्टेनेबल है, और वो कितना इको फ्रेंडली है। इन सारे चीज़ों पे ध्यान
जी
देके ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हमें ये थोड़ा आइडिया आ चुका है कि हमारे लाइफ में किस टाइप के दिक्कतें थी, और हो सकता है कुछ ऐसे नेग्लिजेंस थे जिसके कारण ही आज हम इस ऐसे एक लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। मैं कल एक चीज़ डिस्कस कर रहा था एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के साथ, मैं वो चीज़ आज फिर से मैं डिस्कशन में लाना चाहूँगा। वो ये है कि उसने कहा कि ये कहीं रिसर्च या डेटा तो है नहीं, लेकिन उसका ये इंस्टिंक्ट है। वो कह रहे हैं कि सारे पैंडेमिक्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ये हमारी एक लापरवाही है, चाहे वो कोई भी देश की हो, कोई भी रीजन से हो, कि हम बहुत ज़्यादा जो हैं इन चीज़ों के साथ मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जो भी हैं, बीमारी हैं, वो हमारे तक आ पा रहा है। इसके विषय में आपका क्या सोच है?
देखिए, इसमें तो ये बात तो तय है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप उड़ते उड़ते आवाजें आ रही हैं, तो मैं आपको सही बताऊं तो ये एनिमल्स आपके फूड सिस्टम में जरूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एनिमल्स खाना बंद कर दो या खा रहे हो तो मत खाओ या एनिमल्स को मार डालो। आई एम नॉट प्रो किलिंग या एंटी किलिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर फूड में इकोसिस्टम में है और कल्चरली इसको कंज्यूम किया जाता है फ्रॉम एजेस जहाँ से ये शुरू हुआ है डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन का, तो हमें ये देखना चाहिए ये जो डिजीजेस आ रही हैं मार्केट में वो कैसे आई, उसका चेन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन कंजम्पशन, दो अलग अलग चीजें हैं, क्या हो रही हैं, व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग। अगर ह्यूमन क्रिएशन है तो देयर हैज टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन, सम एजेंसी विच इज क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ वायरसेस। ये खाने से नहीं हो रहा है, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च, कि सिर्फ खाने से नहीं हो रहा है। और जहाँ तक रहा कुछ देश जहाँ पर एक्सटिंक्टेड एनिमल्स को अपने लिस्ट में रखा हुआ है एज अ ईटेबल, तो वहाँ पर इन चीज़ों को समझना जरूरी है। वहाँ पर ये अप्लाई करना कि देर आर सर्टन स्पीसीज दैट आर नॉन टचेबल्स, दैट शुड नॉट बी टच्ड, दैट शुड नॉट बी मतलब दैट शुड नॉट बी टैम्पर्ड विथ। कि मतलब आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेमिंग करूं तो, अगर चाइना में या और भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर एक्सटिंक्ट स्पीसीज को खाया जाता है या ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है जो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन कंजम्पशन है, बट लोग खा रहे हैं, राइट? तो वहां पर जैसे अभी इस पैंडेमिक के बाद चाइना ने कई सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को अपने लिस्ट ऑफ बैंड किया है जहां पर यू कैन नॉट कंज्यूम लोकली या कहीं पर भी, तो इट्स अ गुड स्टेप, बट देन इट हैज टू बी मॉनिटर्ड एंड अप्लाइड टू एवरीवेयर। एंड कहीं ना कहीं ये जो वायरसेस क्रिएट हो रहे हैं, मैं काफी सारे मतलब रेफरेंस पॉइंट में यही लूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्रीज में देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे ऑन पैंडेमिक या ऑन सार या इबोला, उन सब में ये देखा गया कि दीज आर बिंग टेस्टेड एंड क्रिएटेड एट सम लैब, कोई भी लैब हो, कहीं पर भी हो। सो मैं ये नहीं मानूंगा, और मैं आई कैन रियली ब्रिंग आउट माई अंडरस्टैंडिंग टू द प्लेटफॉर्म की ये ह्यूमन कंजम्पशन से नहीं हो रहा है, इंसान के चिकन या कोई भी एनिमल खाने से नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंटरफेरेंस करवाया जा रहा है, वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है, एंड देन उसका फिर नेचुरल म्यूटेशन होने से फिर वो फैल रहा है पॉपुलेशन में।
तो ये अच्छा तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि इस चीज़ को जानबूझ के जो है फैलाया जा रहा है, मतलब कोई तो चाह रहा है कि लोगों को हानि पहुँचे, लोग मरे, या मतलब इट्स काइंड ऑफ अ, जिस तरफ ये डायरेक्ट डायरेक्शन लेके जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, क्या ऐसे ही आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
नहीं, इसमें एक चीज है कि हर चीज जो आप सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि ये किसी को किलिंग पर्पस से किया जाए। देखिए जैसे वर्ल्ड ग्रो कर रही है, हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे जो बॉडी का रिसेप्टर्स हैं, जो एंटी एजेंट्स ऑफ द बॉडी है, उनके उस अंदर की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत जरूरी है कि हमारा कैसे एक्ट कर रहा है। और इस बॉडी को एक्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स हैज टू गो एंड डू सम काइंड ऑफ रिसर्च ऑल द टाइम, ठीक है? बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कम्स अप, कैसा क्या रिएक्शन करे। अब फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में जो आइस शीट्स पिघल रहे हैं, उसमें से सर्टन अमाउंट ऑफ गैस या ऐसा कुछ निकल रहा है जो पहले कई सदियों तक दबा पड़ा था, उसकी वजह से जो एयर में पैथोजेंस हैं या जमीन में या पानी में जो बैक्टीरियाज हैं जो कि कभी एक्टिव नहीं थे, जो ह्यूमन हिस्ट्री में कोई नहीं जानता है, वो अचानक एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हाउ डू वी काउंटर इट? तो वी नीड रिसर्च, वी नीड पीपल इन द साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एंड डू अ टेस्टिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग की हो क्या रहा है। बट द प्रॉब्लम कम्स वेयर, जहां पर देखो है तो इंसान ही, तो जिसके दिमाग में अगर आ गया बदमाशी करना और टैम्परिंग करना, तो वो तो टैम्पर करेगा, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी कि भाई देर आर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। किसी को प्रो ह्यूमन काम करना है, किसी को एंटी ह्यूमन काम करना है, मे बी इस सॉर्ट ऑफ ग्रीड। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू गेट सेफ गार्ड फ्रॉम, कि ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है या जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है जो टेस्टिंग करती है, हाउ नॉलेजेबल एंड हाउ ऑथेंटिक एंड हाउ कंट्रोल्ड दे आर इन टू देयर टेस्टिंग, एंड कितने पैरामीटर्स हैं, कितने मापदंड हैं जो उन्होंने अपने इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए कहा है, किया है। अगर सेफ गार्ड नहीं है on to create a mess that it has done अभी। So, इसको अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ किलिंग के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
ओके और इसका और एक पर्सपेक्टिव जो रिसेंटली काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कोरोना वायरस का जो फैलना है, ये फैलने के पीछे इसका जो स्पीड है, उसके पीछे काफ़ी लोग जो है हमारे ये ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं। क्या आपका भी ये मानना है कि अगर ग्लोबलाइजेशन इस लेवल पे नहीं होता या थोड़ा सा कम होता तो शायद ये वायरस इतना नहीं फैलता?
तो तब का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी था, ठीक है? लोग वॉयजेस करते थे, वॉयजेस करते थे, तो एक देश से दूसरे कंट्री या कॉन्टिनेंट जाने में लगभग महीने दर महीने लग जाता था, तो तब ये फैला था। अब क्या है, विद चेंजिंग इन टाइम ट्रांसपोर्टेशन हैज बिकम लाइक 6 घंटे में आप एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं, राइट? तो द मोर यू आर क्लोजर विद द ट्रैवल, द मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एनीथिंग। जहां पर ह्यूमन कॉन्टैक्ट है वहां तो ये स्प्रेड होना लाजमी है, क्योंकि उसका तो नेचर ही है मल्टीप्लाई म्यूटेट करना। तो द मोर यू ट्रैवल, ऑफ कोर्स ये वही हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे कि आविष्कार जो है वो कभी कॉन्फ्लिक्ट करता है, कभी क्रिएट करता है, कभी डिटोरिएट करता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग, कि ये क्रिएट भी कर रहा है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो में हर कोई, हर कंट्री एक स्कोप ऑफ वर्क है, लाइवलीहुड है, वो हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरा है, उतना ही रिस्क है कि अगर हम बीमार हैं और हमारी बीमारी जिस देश में हम जा रहे हैं उस देश में नहीं है, उसका कोई पैथोजन एंटीबॉडी नहीं तैयार है, तो आई एम अ करियर कैरियर ऑफ दैट पैथोजन एंड आई विल बी लाइक अ एजेंट फॉर कैरिंग दैट टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो मेरे से जिनसे भी मिलूंगा वो शायद उतने स्ट्रांग नहीं होंगे इम्यूनिटी वाइज, तो इन उनको इफेक्ट किया एंड दैट बिकम्स मल्टीप्लाइड एंड देन पूरा समाज, पूरा कंट्री एंड पूरा जो ब्लॉक है वो गेट्स कंटेमिनेटेड। सो एंड इट इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है हम जूम कॉल करके एक देश से दूसरे देश में बात कर सकते हैं, पहले भी जूम कॉल था, बट पहले क्या था कि वी वर सो ग्लैमराइज्ड कि आज हम तो यूएस जा रहे हैं जी ऑन साइट ट्रेनिंग करने के लिए, हम तो जी जापान जा रहे हैं एक नया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। क्या आज वो नहीं हो रहा है? जरूर जरूर हो रहा होगा, राइट? तो आज अगर हो सकता है तो आने वाले वक्त में भी हो सकता है, और पहले था। सो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स डेवलपमेंट एट अ रैपिड स्केल एंड इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ट्रैवल हैज रियली श्रिंक द वर्ल्ड, एंड जितना वर्ल्ड श्रिंक किया हम उतने वल्नरेबल होते गए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और हेल्थ सेक्टर पे बहुत कोई ध्यान नहीं दिया, अगेन टेकिंग इट एज अ ग्रांटेड कि ठीक है जी ये तो होता ही रहता है। सो जहां पर पैसा जाना चाहिए था वो था हेल्थ, वो था एजुकेशन, और इसी तो एंड वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं इसी को ही नेग्लेक्ट किया गया। इसी का नतीजा ये है कि हम आज सिर्फ हिंदुस्तान क्यों, आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट आवर हेल्थ बैक ऑन ट्रैक। इकोनॉमी तब आएगी ना जब आप ह्यूमन रिसोर्स ले आएंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स कब काम आएगी? जब वो हेल्दी होगा बाय बॉडी एंड बाय माइंड, आज दोनों ही नुकसान में है। तो दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड, आई मीन वी हैव नो अदर चॉइस देन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेक द राइट स्टेप फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अराउंड व्हेन एवरीथिंग गेट्स बेटर।
राइट राइट और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो जेनरेशन वाइज एक एक डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे ह्यूमन 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 का, मैं इसको अगर अपने लाइफ से कनेक्ट करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कैसे मेरी माँ जो हैं वो पहले और अभी भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं, बर्तन भी खुद ही करते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, घर का पोछा भी खुद लगाते थे, लेकिन एक जनरेशन के बाद चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं जहाँ पे औरतें जो हैं इन सारे चीज़ों में, घर के काम की चीज़ों में उतना टाइम नहीं देते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेते हैं, काम वाली बाई होती है जो बाकी के काम कर लेते हैं, और कम्युनिकेशन भी इजी हो गया है, तो कहीं ना कहीं लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गया है। और इस कंफर्टेबल के चक्कर में क्या लाइफ बहुत लेज़ी भी हो रही है, और लेज़ी के चक्कर में क्या हमारा जो बॉडी का जो एक बेसिक फंक्शनिंग है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, क्या आपको ये लगता है?
देखिए बॉडी की इम्यूनिटी इन हरकतों से बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करती है, पर खाना फूड उसके प्रॉपर ना होने से डेफिनेटली ये इफेक्ट करती है हमारे बॉडी को। मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन अ सर्वाइवर ऑफ स्वाइन फ्लू H1N1, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विथ माय सिस्टम वाज आई यूज्ड टू वर्क फॉर अमेरिकन कंपनी एंड आई यूज्ड टू वर्क ऑड शिफ्ट्स, लाइक अमेरिका के लिए काम करता था तो शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक मैं काम करता था, घर आता था सो जाता था। एक इम्बैलेंस था फूड के कंटेंट पे कि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मुझे नहीं पता था, जो मिला मैंने ग्रैब किया, नहीं खाया कुछ मंचिन कर लिया। सो जब आपकी लाइफ ऐसे होती है ना तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका जो ह्यूमन बॉडी का एक क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ तक रहा सवाल टेकन फॉर ग्रांटेड का, तो मैं बताऊँ जो आपने रेफरेंस दिया अपने मॉम का, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज हम सब वो काम कर रहे हैं मिल बांट के कर रहे हैं, राइट, विदाउट थिंकिंग कि ये मॉम का काम है, डैड का काम है, मेरा काम है। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, खाना बनाना हो गया, घर की साफ सफाई हो गई, गार्डनिंग हो गया, ये 5 चीजें बहुत बेसिक है, और छठा है ग्रॉसरी लाना। तो आज अगर आप देखें तो बड़ा ही होलिस्टिक सोसाइटी दिख रही है, कि हर लोग बोल रहे कि चलो जी मैं करता हूँ, आपका हाथ पटकाता हूँ, कोई बात नहीं मैं खाना बना देता हूँ, माँ आप बैठो आज मैं झाड़ू लगा देता हूँ, या पापा आज आप बैठो मैं ग्रॉसरी लेके आता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें ये पैंडमिक चाहिए था क्या टू मेक अस रियलाइज कि वी हैव टू डिवाइड आवर वर्क। और अगर ये पैंडेमिक जरूरी था इस रियलाइजेशन के लिए, तो आई एम रियली सॉरी टू से कि हम ये सब जानते हुए भी हम अनजान बने हुए थे, क्योंकि आज हम वही हैं, कोई ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है हमारे विचारधारा में। लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, अकेला कोई इंसान क्यों करे, चलो कोई बात नहीं, मैं भी हाथ बटा देता हूँ। ये जो आउट ऑफ क्राइसिस या कंपैशन का जो ये डेवलपमेंट हुआ है और रेस्पेक्ट बना है टुवर्ड्स एवरीवन, मतलब यहाँ पर जेंडर को मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि कई सारे घरों में अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, अभी भी औरतों को डिप्राइव किया जा रहा है कि नहीं जी आप ही खाना बनाओगे, हमें तो नहीं आता खाना बनाना। बट लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, देर आर लॉट ऑफ हाउसेज, लॉट ऑफ फैमिलीज हु आर हेल्पिंग ईच अदर, स्टैंडिंग बाई ईच अदर इमोशनली, फिजिकली, वर्क वाइज। सो दिस इज वॉट इज द आइडियल सोसाइटी, दिस इज वॉट वी नीड टू इनकलकेट इन आर रेगुलर लाइफ वेंस वी गो बियॉन्ड दिस 2020। दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बात बताइए, आप कंपैशन दूसरों से तब करेंगे ना जब आप घर में कंपैशन को क्रिएट करेंगे, जब आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स, मॉम डैड दोनों मेहनत कर रहे हैं घर को ठीक करने के लिए, एंड यू बीइंग अ सन और अ डॉटर जस्ट सिटिंग बिसाइड एंड वॉचिंग अ टीवी एंड ईटिंग योर खाना विदाउट टेकिंग कंसर्न कि आपने खाना खाया क्या। चलो ठीक है, आज आप खाना मत बनाओ, मैं बना देता हूँ या बना देती हूँ, एंड देन वी सिट ऑन द टेबल टुगेदर एज अ फैमिली, ईट आवर मील, चर्चा करो, घर में बात करो, हंसो खेलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। सो दिस इज वॉट रियली क्रिएट्स अ सोसाइटी। अगर घर बना तब सोसाइटी बनेगी, जो मेरा मानना है।
राइट राइट यस। तो अभी अगर हम देखें कि आने वाले समय क्या हो सकता है, आई मीन द लाइफ बियॉन्ड 2020, एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, एक बार नए रूल्स लागू हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसे काफ़ी सारे चीज़ होंगे हमारे लाइफ में जो नया होगा, जो नया नॉर्मल होगा। तो क्या लगता है ऐसे क्या क्या हमारे लाइफ में हो सकता है, काफ़ी सारे चीज़ हो सकते हैं ऐसे। मुझे तो लगता है सबको पता ही होगा कि अभी से मास्क पहनना बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो जाएगा। तो ऐसे और कौन कौन से चीज़ जो हमारे हर रोज़मर्रे के ज़िंदगी में एक एक परमानेंटली आने वाला है, क्या लगता है आपको?
एक तो है जो आपने कहा मास्क पहनना बहुत लाजमी हो जाएगा, मुझे दूसरा जो चीज़ लग रहा है जो बहुत क्लियरिंग है इंडिया में, वो पब्लिक हाइजीन, जो चलते हुए लोग पान खा के या गुटखा खा के जो पीक मारते हैं, थूक फेंकते हैं, वो एक बहुत बड़ा क्राइम है मेरे हिसाब से। आप किसी भी देश में बाहर में जाइएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा, वहाँ पर फाइन है। मान लो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में गए और आपने अगर ये हरकत कर दी या च्युइंगम खा रहे हैं, च्युइंगम फेंक दी, पहले तो आपको फाइन किया जाएगा, उसके बाद आपको रिप्रमेंड करके आपके उसमें लिखा जाएगा, जो आपका एक सोशल सिक्योरिटी में होता है डॉक्यूमेंट, यू हैव बीन फाइन फॉर द वायलेशन ऑफ सच एंड सच थिंग्स। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये समझना चाहिए, अभी इंडिया में भी ये चालू कर दिया गया है कि इफ़ यू आर फाउंड स्पिटिंग ऑन द रोड यू विल बी फाइंड एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, आई डोंट नो कि वो कितना इम्प्लीमेंट होगा। सवाल गवर्नमेंट इंटरवेंशन का नहीं है, सवाल यहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन बींग का है, जहाँ पर वो खुद स्टेप फॉरवर्ड करके कहें कि जी नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज नॉट वॉट इज सपोज टू डू। बट ये कितना सक्सेसफुल होगा और कितना दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा, वी डोंट नो। देन कम्स ट्रैवल। अब ट्रैवल, अब देखिए, चाहे वो मेट्रो में ट्रैवल करें, ऑटो में ट्रैवल करें, बसों में ट्रैवल करें, एरोप्लेन में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें, ये चीज़ें बदलने वाली हैं। पर्सनल हाइजीन विल कम इन टू द फोर फ्रंट, जहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी ही होनी होगी, प्लस एक साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साफ सफाई इन जगहों के अलावा अपने घरों का, अपने हाथों का, जो अभी हमने एक नया कल्चर शुरू किया, पहले भी था बट हम कहीं भूल चुके थे अपने इस दौड़ भाग में, कि हमारा हाथ, हमारे कपड़े, बाहर से घूम के आए वही कपड़े, मैं भी गुनहगार हूँ पता है, कि मैं भी कपड़े खोल के नया फ्रेश कपड़ा नहीं पहनता था कहीं ना कहीं, मैंने भी आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज नो ये पब्लिक डोमेन है जहाँ पर हम लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है, हम लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे पे भी जिम्मेदारी बनती है टू कम आउट क्लीन। तो हमने भी कई बार ये बाईपास किया है, हमने रूल नहीं माना है, एंड लेट्स फेस इट, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं आई एम टेकिंग इट ऑन माई सेल्फ कि ये मैंने काफ़ी बार बाईपास किया है, कि आके कपड़े नहीं धोए या पैर हाथ पैर नहीं धोया, जबकि बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा आप बाहर से आए हैं, चप्पल बाहर रखिए, अपना पैर धोइए, हाथ मुंह धोइए, कपड़े चेंज करके फ्रेश कपड़ा पहनी, ये सिखाया गया था हमारे पेरेंट्स के द्वारा, बट कहीं ना कहीं बड़े होते होते हमने सब बाईपास कर दिया।
राइट
आने वाले दौर बियॉन्ड 2020 इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम।
ओके और मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छी बात होने वाली है कि सबके लिए ही एक अच्छा चीज़ होने वाला है।
हाँ बिल्कुल, अच्छा तब होगा, हम सब इस पालन करेंगे अपने अपने लेवल पे। मैं सरकारी इंफॉर्मेशन और उसके स्क्रीनिंग की बात ही नहीं कर रहा।
राइट राइट ओके और क्या लगता है आपको जो हमारे इम्पैक्ट इस पूरे चीज़ का, चाहे वो वायरस हो, लॉकडाउन हो, लाइफस्टाइल हो, खाना पीना हो, पर्सनल हाइजीन की बात हो, इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है?
मैं ना मैं कुछ दिन पहले अपने कुछ बच्चों से, जिसके साथ मैं जिनके साथ मैं वर्कशॉप करता हूँ, उनसे बात हो रही थी, तो उनके ग्रीवाइन से सुन के मुझे अपना बचपन याद आ गया। कहीं ना कहीं आई फील रियली पिटी फॉर देम, बिकॉज बेचारे बच्चों का आज इतना भविष्य अंधकार में है। दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट कहीं ना कहीं वी हैव नॉट अडॉप्टेड टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ लर्निंग। और टीचर्स जो हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इक्वली, क्योंकि मैं टीचर्स के साथ भी बात करता हूँ और उनके साथ भी काफ़ी डिस्कशंस में रहता हूँ कि हाउ डू वी टीच द यंग वंस। बिकॉज एक तो कि आँखों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रहा है। प्लस मैं ये मानने को तैयार नहीं कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चा अपने हिसाब से इंटेलिजेंट है, बट जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको समझना इन वन गो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हर टीचर के लिए हर स्टूडेंट को सेपरेट टाइम देना भी डिफिकल्ट है। तो इसका एक रास्ता हमारे एजुकेशनिस्ट को ढूंढना पड़ेगा कि हाउ डू वी कम टू अ कंक्लूजन जहाँ पर बच्चों का एक पढ़ने और पढ़ाने और समझने का एक मापदंड तय हो कि कितना पढ़ाया जाए कि उनको समझ में आए। 40 मिनट के क्लास में वाकई में 40 माइंड ट्रिकल करेगा, आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे आपको पढ़ाना पास करवाने के, क्योंकि टीचर्स इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है ना। उनको कभी समझ भी नहीं आया कि बच्चों को एग्जाम के अलावा भी पढ़ाना, मतलब फंडामेंटल एजुकेशन इन रियल टर्म्स करवाना है, तो वो बहुत बड़ा गैप होने वाला है। बच्चे सफर कर रहे हैं, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई बच्चों को पास कर दिया जाएगा। पास कर दिया जाएगा, आई मीन रियली, आपने उस बच्चे के आईक्यू को चेक किया? क्या वो आगे पढ़ने के लिए तैयार है? क्या उसका फंडामेंटल्स क्लियर है? अगर नहीं है तो क्या है उसका वे आउट? वो तो आगे जाके कभी ना कभी फेल होगा, या कभी ना कभी ऐसे मोड़ पे जाके अटक जाएगा जहां पर उसके आगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तब क्या होगा? आज तो आपने बचा लिया, तो देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस गिवन इनटू एजुकेशन ऑफ किड्स, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल है, उनको नहीं समझ में आ रहा है एंड दे आर सफरिंग। बट उस सफरिंग को समझने के लिए भी अथॉरिटीज शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन अ न्यू वे कि कर दोगे यार, आज 1 महीना बाद चलो समर वेकेशन भी डिक्लेयर कर दोगे, अगस्त में खोलोगे, कर लेगा क्या? सौरभ मैं बहुत मतलब ग्रास्पिंग पावर मेरे में बहुत कम थी बचपन में, मुझे क्लासरूम में नहीं समझ में आता था, तो मेरे जैसे तो कई सारे बच्चे होंगे, उनका क्या?
राइट
मतलब वो ऐसे ही मगअप कर जाएंगे पढ़ाई को, और हम क्या तैयार कर रहे हैं? हु आर दिस इंडिया दैट वी आर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग? फिर से कॉपीकैट्स, कि हमने तो कॉपी कर लिया जी, दिमाग में बैठा लिया, छाप लिया हमने, उसको फिर रट्टा लगा के हम डाउनलोड डाउनलोड कर देंगे, तो क्या हम उसी जनरेशन को पैदा कर रहे हैं क्या फिर से? अभी मौका है न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो आपके हर्ष करते हैं, न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड, न्यू एजुकेशनल लीडर शुड बी एक्नॉलेज्ड, न्यू एजुकेशनल सिस्टम शुड बी यू नो थॉट अबाउट, क्योंकि ये सिस्टम हमारे देश को बनाएगा, हम आप नहीं बनाएंगे। ये जो आने वाला कल है वो उनके हाथ में है, अगर आज खराब है तो आने वाला वक्त खराब होगा।
राइट राइट सो ये एक काफ़ी अच्छा एक मैसेज और सोच, एक अच्छा दृष्टिकोण मिला है आज हमें कि एक ऐसे समय से हम लोग जा रहे हैं जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव आउटपुट ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों के एडुकेशन पे ध्यान दें, खास करके पेरेंट्स जो हैं जो अपने बच्चों को एडुकेशन के बारे में अभी काफ़ी उत्सुक हैं और कुछ लोग तो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का एडुकेशन करवाएं। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक दिशा निर्देश मैं कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे के एडुकेशन पे काम करें, क्योंकि बार बार लास्ट 2 दिन से हम जितने ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बार बार ये आया है कि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पीढ़ी है, क्योंकि हमने शायद हमारे और हमारे पहले गए सारे जनरेशन के ये सबसे एक हाई पॉइंट पे आज हम आके रुके हैं, और हमें डिसाइड करना है कि आगे आने वाले जितने भी जनरेशन हैं उनके लाइफस्टाइल हैं वो कैसे डिपेंड होगा, और उस चीज़ के लिए हमें एडुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जी, प्लस दूसरी बात यह है कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे देश में कि हर बच्चे के पास या हर माँ बाप के पास स्मार्टफोन हो, टैब्स हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और अगर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें डेटा कौन देगा, और डेटा के लिए, डेटा जब खर्च हो जाएगा तो वो बच्चा कहाँ से फिर से डेटा रिचार्ज करवाएगा, या उसके माँ बाप कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे? तो दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन सौरभ, जहाँ पर द अथॉरिटीज, द एजुकेशन सेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर शुड थिंक, बिकॉज इट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस।
तो पॉलिसी चेंजेस काफ़ी ज़रूरी है। सो जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लोग सजेस्ट करते हैं नए पॉलिसीज़ या थिंक टैंक्स जो हैं उनको भी काफ़ी लग के काम करना पड़ेगा इन सारे चीज़ों पे चेंजेस लाने।
About it, because education is the core, health is a core. Because health system चरमराया, education system चरमराया, तो हमारा जो basic structure है वो कहीं ना कहीं कमजोर है बहुत बड़े लेवल पे।
एक विषय और है जो जिसको मैं टच करना चाहूँगा कि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि गंगा का पानी, यमुना का पानी, सारे रिवर्स के पानी पूरी दुनिया भर में साफ़ हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, पीने लायक हो गए हैं। तो ये एक बात क्लियर करती है कि जितने भी अभी तक सो कॉल लोग काम कर रहे थे या एनजीओस काम कर रहे थे इन पानियों के ऊपर, वो खास कुछ मतलब का था नहीं। एक रिवर को साफ़ करना मुझे नहीं लगता कि एक इंसान की बस की बात है, वो सिर्फ़ एक रिवर ही कर सकता है या कर सकती है, और हमें सिर्फ उनको उनके अंदर जो जाते हुए पॉइजन है उसको रोकने पे ध्यान देना चाहिए।
वो तो है ही। देखिए, मैं कई सारे एनजीओ के साथ काम किया हूँ, स्टडी किया है, अंदर तक उनके स्ट्रक्चर को समझा है, और मैंने ये जाना है कि जब तक गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट एजेंसीज कर्ब या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को सही तरीके से अप्लाई नहीं करेगी और ट्रीटेड पानी को रिलीज नहीं करेगी, अनट्रीटेड पानी को वो ब्लॉक करेगी, तब तक हमारी नदियां फ्री नहीं होंगी आउट ऑफ दिस मेस। नदियों में प्रॉब्लम नहीं है, इन पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। यहाँ पर इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था एक लेवल तक कर सकती है, नए चीजों को इजाद करके गवर्नमेंट के पास ले जा सकती है कि जी हमने ये तैयार किया, आप इसको सहायता करें, हमने ये कैंपेन चलाया, आप उसको सहायता करें। तो दे हैज टू बी अ वेरी वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड दीज एजेंसीज। देखिए, गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, बट वो बहुत सारे काम ऐसा करवा सकती है इन पार्टनरशिप विद दी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ब्रिलियंटली काम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डूइंग रियली अमेजिंग वर्क ऑन ग्राउंड। सो एक कोऑर्डिनेशन करके सबका फायदा हो। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पहले भी बताया कि डेवलपमेंट थिंकिंग ऑफ प्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, आप इंडस्ट्रीज बैठाइए, बट प्लीज मेक श्योर कि आप उससे जो कंटेमिनेशन हो रहा है उसको आप एड्रेस तो करें। और आपका अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री बैठाने के लिए इतने अरब रुपए खर्च कर सकते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी तो आप कर सकते हैं ना। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं, और अगर कर रहे होते, तो आज तक जो कंटेमिनेशन हो रखा था पानी में वो नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो हमारी मछलियां, हमारे पानी इतने खराब नहीं होते। सो दीज आर फंडामेंटल थिंग्स दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, और पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है। अगर आपको रेफरेंस के लिए, देखिए अगर आप मेरे से पूछें कि ऐसा पब्लिक ने क्या किया जो पब्लिक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये जो स्पिरिचुअल गार्बेजेस हैं जो यमुना के ऊपर, अगर हम देखें, अगर रेफरेंस पॉइंट यमुना को ही लेते हैं, तो यमुना के ऊपर जाने के पहले ब्रिज आती है, उस ब्रिज में खड़े होकर लोग अपने स्पिरिचुअल वेस्ट को गिरा देते हैं पैकेट में बांध के, तो ये नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट नहीं बताएगी आपको, ये एनजीओ नहीं बताएगा आपको, राइट? यहाँ पर आपका खुद का भी सेंस होना चाहिए ना कि आप जो ट्रैश फेंक रहे हैं, इट्स अ ट्रैश, ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल मीनिंग है आपके लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, इट इज पोल्यूटिंग द रिवर बॉडी। सो वो कौन समझाए? और हिंदुस्तान इतनी स्पिरिचुअल कंट्री है कि यहाँ पर हर चीज में आपको पूजा पाठ और स्पिरिचुअल माला धागा, छोटे छोटे चीज, लेकिन बहुत टॉक्सिक आप फेंक देते हैं, क्योंकि आपको फेंकना नहीं कहते हैं, आपने विसर्जन कर लिया, तो आपने अपना तो विसर्जन कर लिया, लेकिन उस पानी बेचारे का क्या दोष, उस मछली का क्या दोष, उस विसर्जित चीजों को वो कंज्यूम करे, फिर वो खुद बीमार हो, उसको जो पकड़ के खाए वो बीमार हो, तो चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इंटरफेरेंस इज व्हाट नीड्स टू बी ब्लेम्ड, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस तब ठीक हो सकती है जब ह्यूमन खुद ही समझे कि बॉस हमें नहीं फेंकना है, तो ना नदी गंदी होगी, ना मछलियां गंदी चीज खाएंगी, और ना इंसान कंज्यूम गंदा करेगा अकॉर्डिंगली। अगर कंपनीज ये सोच ले कि भाई ये जो पानी हम ट्रैश कर रहे हैं उसको हम ट्रीट करके अगर हम वही पानी को रिलीज करते हैं, तो वही पानी हमारे घर में कहीं ना कहीं प्यूरिफाई होके आ रहा है ना, तो इट हैज टू बी इनवर्ड जर्नी, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम इंसान हो, थिंक इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे कि बॉस इसका जो चेन रिएक्शन और एम आई इफेक्ट, मतलब यहाँ पर वो इंसान की खुद भी नहीं बट सोसाइटी एट लार्ज, कि आपके एक हाँ या ना से क्या सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट हो रही है क्या? अगर कोई बॉयलर है, अगर कोई कंपनी में मान लो केमिकल डाई की फैक्ट्री है, और उस केमिकल डाई का फैक्ट्री ओनर अगर ये नहीं समझे कि जो केमिकल क्लीन अप होके निकल रहा है, ट्रैश हो रहा है, पानी नाले में जा रहा है, अगर उसको हम क्लीन करके नहीं डालें, तो कल क्या पता हमारा बच्चा उस नदी के पानी में नहा के कंटेमिनेट होके स्किन डिजीज हो जाए। तो मतलब इट हैज टू बी देयर इन द थॉट्स कि नहीं जी हम तो ट्रीट करके ही पानी डालेंगे, उसका ऑडिट करेंगे, उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे, सो दैट कभी भी ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए और टॉक्सिक पानी रिलीज हो जाए पानी में, नदियों में। तो इट हैज टू कम फ्रॉम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो कि मिसिंग है।
राइट राइट और तो काफ़ी कुछ है, मतलब मैं सुनते सुनते काफ़ी सोच में पड़ गया था और काफ़ी अंदर तक सोच रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद से करना पड़ेगा। हम बार बार जो हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ये नहीं कह सकते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम तो घर पे ऐसे ही बैठे रहें। तो कुछ काम है जो हमें और गवर्नमेंट को एक साथ करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को। तो ये एक यूनाइटेड ह्यूमंगस एफर्ट जो आपने कहा था, सही में ये एक सबको मिलके एक सार्वजनीन काम है जो सबको मिलके करना चाहिए और हर चीज़ के प्रति करना चाहिए, चाहे वो एडुकेशन हो, नदी हो, अपना खाना पीना हो, अपने कपड़े हो, कहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, हर चीज़ को। तो काफ़ी एक बड़ा चीज़ है, काफ़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है सौरभ, कुछ और विषय में अगर आप बोलना चाहते हैं कि कुछ आपके तरफ से अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, और कुछ अगर आप अपने तरफ से ऐड करना चाहेंगे इसमें।
नहीं, मैं तो यही ऐड करना चाहूंगा कि देखिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां हर एक लाइक माइंडेड इंसान, हर एक लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन हाथ मिलाए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक बंदा ठीक नहीं कर सकता, एंड देर हैज टू बी अ मास्टर प्लान टू व्हाट वी आर प्लानिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज यहाँ से इट इज अप टू अस। तो आई वुड रिक्वेस्ट हूएवर इज लिसनिंग एंड जो भी ये समझ रहे होंगे होंगे या समझना चाह रहे होंगे, सो प्लीज अपना राय मशवरा हमें दें। आप इसमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप सौरभ आप चाहें तो इंस्टाग्राम पेज लिंक दे सकते हैं, हूएवर वांट्स टू विश, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 10 ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हाथ मिला चुके हैं हमारे पास, हु आर प्लानिंग टू कम विथ अस, क्रिएट अ मोमेंटम, क्रिएट अ स्ट्रक्चर जहाँ पर वी सी हाउ वी लिव बियॉन्ड 2020 बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
एक चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा आज के डिस्कशन में कि जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो फोर्सफुली हो, चाहे हम समझ के वो कर रहे हैं, या एक समय हमने वो किया नहीं था, अभी वो समझ गए तो हम उसको कर रहे हैं, गलतियाँ सही कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है ओवरऑल हम एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छे दुनिया को देखने जा रहे हैं आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन।
जी, तो वी हैव टू कीप आवर होप्स अलाइव। ये तो एक रेवोल्यूशनरी होप का जमाना है, सो सिर्फ होप से नहीं होगा, वी हैव टू हैव एक्सट्रीम हाई होप्स सो दैट अपने होप को ही हम चैलेंज मान के उसको ओवरकम करने की कोशिश करें।
थैंक यू सो मच। मैं एक बार ये पॉडकास्ट ख़त्म करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल और लिंक डाल दूंगा, सो दैट जो बाद में इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो हमसे कनेक्ट कर पाए, वो सौरभ के साथ और उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर पाए। सो थैंक यू
जी,
सौरभ फॉर ज्वाइनिंग और आज इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए।
थैंक यू सो मच सौरभ, आपसे बात करके हमेशा इट्स एन इंगेजिंग अफेयर जहाँ पर मुझे भी काफी कुछ समझने को और टाइम मिलता है आपसे डिस्कशन, और आपके क्वेश्चंस इतने वैलिड होते हैं कि आई रियली गेट इंट्रीग्ड कि हाँ दिस इज सम वाइटल क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग डेड रिवर प्रोजेक्ट एंड सपोर्टिंग अस। And yeah, we are all in this together. So, looking forward to more such sessions. Thank you so much, people. Thank you for joining.
यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो अभी सुन रहे थे हम लोग को लाइव और जो आने वाले समय में इसको रिकॉर्डेड सुनेंगे। सबको हमारे तरफ से धन्यवाद एक बार फिर से, और हम लोग फिर आज जुड़ने वाले हैं एक और लाइव पॉडकास्ट में जिसका नाम है फैशन एंड फूड। हम एक बहुत ही यंग एक ऐसे लड़की से बात करेंगे जो फूड और फैशन को लेके काफ़ी दिन तक रिसर्च कर रहे हैं, उनके फैमिली में काफ़ी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी दिन से किस टाइप के कपड़े हमें पहनने चाहिए और किस टाइप के लाइफस्टाइल लीड करने चाहिए, इन सारे चीज़ों को लेके काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आज उनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस टाइप का फैशन और फूड हमें आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम उसको एक पार्ट ऑफ द लाइफ बना पाए। ये है अगला पॉडकास्ट जो हम 5 बजे से शुरू करेंगे। आई होप अगर आप लोगों में से किसी को ऐसे सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है तो हमसे जुड़िएगा 5 बजे, और हम मिलते हैं 5 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। दिस वाज सौरव, आई एम साइनिंग ऑफ, एंड दिस वाज लाइफ बियॉन्ड 2020 जो हमारा आज का पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच।